ओके, क्या क्वेश्चन है? या
जैसे
एक मिनट, जैसे क्यों बोल रहे हो?
मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जैसे, इसलिए।
हाँ तो एग्जांपल तब देते ना जब कोई पॉइंट होता है।
पहले एग्जांपल देके फिर पॉइंट।
ये तो उल्टा है, तो गलत है, फिर उसमें जैसे क्यों बोलना चाहिए?
वाग संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय में राधे राधे बोला जाता है।
हाँ,
हम अपने आप को शुद्ध करने के लिए हरे कृष्णा बोलते हैं।
हाँ,
वो शुद्ध करने के लिए राधे राधे बोलते हैं। तो हमारे गुड़िया वैष्णव संप्रदाय में ऐसा मतलब मनाही क्यों बोलने से?
वो इसलिए है क्योंकि निम्बार्क संप्रदाय में मंत्र राधे श्याम 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 राधे राधे है ना, और वल्लभ संप्रदाय में श्री जी बोल, वल्लभ संप्रदाय में श्री बोल,
जय श्री कृष्ण
बोल,
राधे राधे भी बोलते
हैं। वो तो ऐसे नमूने बोलते होंगे क्या, मतलब पॉइंट में नमूना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनके आचार्य रिकमेंड कर रहे हैं, यानी मैं ये कह रहा हूँ जो वल्लभ संप्रदाय के जो मेन जो आचार्य वल्लभ आचार्य खुद पुरुषोत्तम आचार्य हरिराय जी वो कह रहे हैं राधे राधे कहने को, क्योंकि आजकल तो सभी बोल रहे हैं, मतलब सही संप्रदाय में होके भी तो गलत काम कर रहे हैं ना लोग। सो इसलिए राधे राधे बोलना वल्लभ संप्रदाय में ओपनली नहीं बोलना चाहिए। आइडियली उनके किसी आचार्य ने राधे राधे बोलने के लिए बोला नहीं है, श्री इसलिए श्री लगाते हैं, श्री कृष्णा शरणम मम, आइडियली नहीं है क्योंकि राधे कॉन्सेप्ट, राधा का कॉन्सेप्ट ही वल्लभ संप्रदाय में बहुत छुपाया हुआ है।
क्या श्री राधे बोल सकते हैं?
एक मिनट, तो वल्लभ संप्रदाय में, वल्लभ संप्रदाय में इसलिए लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, है नहीं? मतलब राधा के साथ तो करते भी नहीं, बाहर से तो बाहरी पूजा लड्डू गोपाल की होती है, मगर अंतरंग पूजा राधा रानी की होती है। वो दो अलग अलग चलता है, जो एडवांस कर जाता है उनको बताते हैं, वो तो वहां बिल्कुल छुपा के रखते हैं। इसलिए आजकल जो वल्लभ संप्रदाय में राधे राधे करते हैं वो गलत कर रहे हैं, उनको खुद ही नहीं पता उनकी संप्रदाय क्या है। वो तो वृंदावन से इन्फ्लुएंस होके भाई यहाँ पे भी लोग कर रहे हैं, है नहीं? मतलब गौड़िया वैष्णव से भी पता नहीं होता तो करते रहते हैं, पता नहीं है ना, उनको नॉलेज नहीं है। सो इसलिए वल्लभ संप्रदाय में कहना राधे राधे करते हैं गलत है। निम्बार्क संप्रदाय में जरूर वो राधे श्याम उनका मंत्र होता है, मगर राधे श्याम मंत्र वो बोल के नहीं करते, उनको छुपा के दिया जाता है, उनको अपने करना पड़ता है अपने मन मन में। मगर आजकल बोल रहे हैं, नहीं आजकल बोलते हैं, वो आजकल की कहानी है, वो डिविएशन है। डिविएशन समझते हो ना, वो डिविएशन कैसे कहेंगे?
भटक गए।
वो भटक गए अपने ही संप्रदाय से। निम्बार्क संप्रदाय के लिटरेचर्स में, वल्लभ संप्रदाय के लिटरेचर में राधे राधे कहीं भी नहीं लिखा है, बल्कि ये लिखा है कि वो गूढ़ कॉन्सेप्ट है, उसको छुपा के रखो। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो मैं बोला राधे राधे नहीं बोलना, वो जो सही ट्रेडिशन है, तो सही टीचिंग है, उसको फॉलो करते हुए बोला है। तो जो वो कर रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं, सही लोग। मगर अब गलत करने वाले तो अब कुछ भी करें, वो तो हमारे यहां पे भी रह के ऐसे राधे राधे बोल सकते हैं, वो तो वहां पे रह के भी बोल, उनको खुद ही नहीं पता, उन्होंने खुद ही अपनी किताबें नहीं पढ़ ली। कितने वल्लभ संप्रदाय के लोगों ने अपनी किताबें पढ़ी है मुझे बताओ, जाके पूछो। 99% लोगों ने वल्लभ संप्रदाय में किताबें नहीं पढ़ी, उनको ये भी नहीं पता होगा कि हरि राय जी कौन है, जिसने पढ़ा ही नहीं।
मतलब सब बता रहे हैं कि बुक सारी गुजराती में है, इसलिए भी प्रॉब्लम है।
अरे गुजराती वालों ने भी नहीं पढ़ी, चलो आप गुजरात वालों से पूछ लो, उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी, किताबें है ही नहीं उनके पास, पढ़ेंगे क्या? किताबें नहीं है मतलब संप्रदाय में, हमें ढूंढनी पड़ रही है किताब, हम ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं। उनके जो गोस्वामी है वो कह रहे हैं कि भैया किताबें सड़ रही हैं यार, वो तो प्रहलाद प्रभु गुजरात गए थे, उनके क्या कहते हैं उनके, तो उनके जो गोसाई जी होते हैं वल्लभ संप्रदाय के, तो वो प्रहलाद प्रभु ने पूछा भी किताबें कहाँ हैं, तो उन्होंने पूछा भैया ऐसा है वो अलमारी उसको खोल लो, धूल साफ कर देना और किताबें ले लो, तुम्हें पढ़नी है पढ़ लो, बड़े खुश थे कोई तो आया, कह रहे थे चलो अगली बार आके एक बार मेरी हेल्प कर देना, धूल साफ करा देना, कोई साफ करने वाला कोई नहीं। सब पैथेटिक सिचुएशन, किसी को कुछ, निम्बार्क संप्रदाय की तो किताब ही नहीं है, निम्बार्क संप्रदाय की सारी किताबें खो चुकी हैं। एक किताब है महावाणी, महावाणी पढ़ोगे तो पागल खाने में चले जाओगे, वो किताब हमारे से बियॉन्ड है, वो बहुत हाई बुक है, वो हमारे लिए, वो बद्ध जीवों के लिए है ही नहीं महावाणी। दो तीन किताबें और हैं भगवद गीता की कमेंट्री केशव कश्मीरी की, वो सिंपल चीजें हैं, बाकी किताबें हैं नहीं। बाग संप्रदाय वाले तो हमारी बुक्स पढ़ते हैं। सो इसलिए जो महाप्रभु ने कहा है वो शास्त्र सम्मत है। वल्लभाचार्य और निंबार्काचार्य वो भी शास्त्र सम्मत बात कर रहे हैं कि राधे राधे नहीं बोलना चाहिए, राधा रानी का कॉन्सेप्ट छुपा के रखा जाना चाहिए, वो नॉर्मल पब्लिक के सामने नहीं बोला जाता। इतना होता है कि अर्चविग्रह के रूप में राधा कृष्ण है, मगर प्रभुपाद ने बोला है कि बद अवस्था में राधा कृष्ण की पूजा हो ही नहीं सकती। बद अवस्था में हम लक्ष्मी और विष्णु की पूजा कर रहे हैं, हमारे लिए राधा कृष्ण को अभी हम राधा कृष्ण की तरह नहीं देखते, अभी हम राधा कृष्ण को लक्ष्मी नारायण के रूप में देखते हैं। दूसरा कहने का दूसरा मतलब है अभी राधा रानी और कृष्ण को हम बहुत आदर के साथ श्रद्धा के साथ इस तरह पूजा करते हैं नहीं, तो राधे राधे कहना तो बिल्कुल ही अलग बात है। नहीं वो तो हम किसी को आदर देंगे तो राधे राधे थोड़े ना कहेंगे, वो तो प्रेम से हो गया ना। अभी प्रेम से बात नहीं चल रही, तो प्रेम मिला ही नहीं, अभी तो प्रेम मिलने के रास्ते पे तो आदर दे रहे हैं, तो राधे राधे तो हम बोल ही नहीं सकते, वो तो अपराध है सीधे। तो वृंदावन में कौन हर आदमी, वृंदावन तो हर आदमी डाकू है, गुंडे हैं, गुंडे भरे पड़े वृंदावन में, जाके देख लो, हम तो वहीं रहते हैं, जो कथा करने वाले वही गुंडे लगते हैं शक्ल से, है नहीं, देख लो कितने सारे लोग, मतलब जरूर होना कि वृंदावन में जो रह रहा है सभी परमा हमसे, काफी गड़बड़ भी तो हो रही है वृंदावन में, ड्रग्स पी रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, लड़कियां रखी हुई हैं, सब तो चलता है वहां। आप लोग तो बाहर से जाते हो ना, हम लोग तो वहीं रहते हैं ना, हम तो सेंट्स हैं, हमें तो सब पता अंदर की कहानी। सो जरूरी नहीं, मगर इसका मतलब नहीं कि वृंदावन शुद्ध जगह नहीं है, लोग गलत हो सकते हैं, बहुत लोग गलत काम कर रहे हैं, गलत गलत चीजें बोल रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें तो शास्त्रों से सीखना है सही नॉलेज क्या है, नहीं गीता भागवत और वेदांत क्या कह रही है, तभी तो हम क्लास कर रहे हैं यहां पर कि भैया अगर सुनो, वरना करोड़ों करोड़ों बोलेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, हम भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि भी हमारी बात भी मत मानो आप, हम तो कह रहे हैं भी गीता पढ़ो और भागवत शास्त्र पढ़ो, आपको खुद ही पता लग जाएगा क्या सही है क्या गलत है। अपने मन से कुछ भी करते रहेंगे ना तो फिर तो आएगी नहीं ना।
हमारे से भी पूछते हैं आप राधे राधे क्यों नहीं बोलते, हम तो उनको ये हम इतने शुद्ध नहीं है भाई, राधे राधे नहीं बोल सकते।
हाँ, बस ठीक है ये भी बात सही है। हाँ। मगर आप उसमें ये अब ऐड कर सकते हो जो मैंने बताया कि शास्त्र सम्मत नहीं है, हमें शास्त्रों में कहीं दिखा दो, किसी भी संप्रदाय में दिखा दो, है ही नहीं। सो आप बोल सकते हो उनको कोई है ही नहीं, कहां से दिखाएगा वो। तो महाप्रभु ने कोई शास्त्र असम्मत बात थोड़ी ना कि, वो भगवान है भाई, उन्होंने जो कह दिया
वो शास्त्र बोलने का, वो बोले जो बोलते हैं ब्रजवासी कहते बोलते हैं ना राधे राधे, वो बोले वो ब्रजवासी
हैं। वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है चलो बोल सकते हैं, बट वो भी आप बोल सकते हो हर ब्रजवासी, ब्रजवासी तो वो है भाई जिसकी चेतना भगवान के पास है, जिसमें काम वासना नहीं है, वो ब्रजवासी है, चाहे वो राजपुरम है चाहे ब्रज में। अब वहां पे बैठे आपको भी पता है क्या होता है। सो आप ये बोल सकते हो चलो जो भी है, मगर वी कांट स्पीक, मगर ये इस बोलने में गड़बड़ है। अगर हमें बोलेंगे ना कि हम इतने शुद्ध नहीं है राधे राधे बोलने के लिए, तो वो दूसरा बंदा कहेगा ठीक है तुम मत बोलो, मैं तो शुद्ध हूं, मैं बोलूंगा, गड़बड़ है उसमें, ठीक है मत बोलो, हम तो शुद्ध है, तुम्हें कैसे पता हम शुद्ध नहीं है। मगर हमें कह रहे हैं भाई कोई बोल ही नहीं सकता, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, तुम बोल नहीं सकते, गलत है, बस दैट्स ओके। शास्त्र सम्मत नहीं है, दिखा दो हमें, आ जाओ टेबल पे, आ जाओ बात करते हैं हम। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन, राजपुरा के में भी ऐसे रेलेवेंट हो सकता है। ओके
श्री राधे बोल सकते
हैं। ये बताओ बोलना ही क्यों है,
साक्षी गोपाल जी महाराज आज बोल रहे थे वहां,
गोविंद का मुझको कौन है मुझे नहीं पता,
वेल आई डोंट नो।
श्री देखो श्री राधे, राधे हम वर्ड नहीं बोल सकते पब्लिक में, राधा बहुत गूढ़ वो है, रहस्य, राधा नहीं बोल सकते हम लोगों को, किसको समझ क्या आएगा राधा कौन है। राधा तो जब मुक्त हो जाते हैं, जब कृष्ण भक्ति आ जाती है तब समझ आता है राधा कौन है।
वो तो
मैं क्या करूं, चाहे ABCD है, शास्त्र सम्मत नहीं तो गलत है, चाहे वो इस कौन में ही है। तो फिर तो गलत ही है। फिर तो आपको पता ही है जब वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे, फिर तो एविडेंस ही मिल गया कि भी श्री राधे बोल रहे कोल्ड ड्रिंक पी रहे, तो क्या वो गलत ही है। अगर वो ब्रह्मचारी और संन्यास की पोजीशन पे और वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कोई
कंप्लीट,
फिर तो डेफिनेट हम बात नहीं मानेंगे. दैट्स अ बैड थिंग. पब्लिक में कर रहे हैं मतलब लोग क्या सोचेंगे ये कि यही फॉलो नहीं करते तो हम लोग क्या करेंगे, फिर सब मजे भोग करते रहेंगे. दैट्स अ बैड थिंग ना. सो नोबडी देयर डोंट नो एनीथिंग. सो इसलिए मैं कह रहा हूँ जरूरी नहीं कि इस्कॉन में भी जो है सही है, ऐसे नहीं जो हमारे यहाँ सब बैठे सही है. हम ये क्लेम नहीं कर रहे, ये क्लेम करना तो बेवकूफ़ी होगा कि हमारे यहाँ सब सही है बाकी सब गलत है. नहीं, हम तो ये कह रहे हैं जो शास्त्र फॉलो कर रहा है वो ठीक है, जो नहीं कर रहा वो गलत है. चाहे आप में से कोई हो, आप में से नहीं कर रहे तो गलत हो, दैट्स ऑल. चाहे यहाँ पे बैठे हो, हमारी मोनोपली थोड़े ना है कि हम ही ठीक है. हम कैसे ठीक है? अगर आप फॉलो करोगे कृष्ण को प्राप्त करोगे, नहीं करोगे तो नहीं करोगे, बस सिंपल. ओके, और कोई क्वेश्चन है किसी का?
सेम क्वेश्चन है कि हरे राम कई नेपाल में पहले लगाते हैं.
हरे राम पहले बुलाते हैं कई बार. हाँ. हरे कृष्णा बाद में बोला जाता है. हम लोग हरे कृष्णा पहले बोलते हैं और हाँ, दोनों ही है शास्त्रों में. शास्त्रों में हरे राम भी पहले है और कई में हरे कृष्णा भी पहले. तो कुछ लोग हरे राम पहले बोलते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण. हम लोग पहले हरे कृष्णा बोलते हैं.
ऐसे वैदिक ट्रेडिशन जो इंडिया का है तो वही है, यही है हरे राम पैटर्न. और वो बोलते हैं कि इसको उन्होंने उल्टा कर दिया.
गलत है. वेदों में तो पहले हरे कृष्णा भी दिया हुआ है. ये तो एक बुक ही है कि तो केशव जी गौड़िया मठ है तो नारायण महाराज ने पूरी बुक ही निकाल दी थी इस पे. उसमें अलग अलग शास्त्रों में दिया है, कहीं में हरे राम पहले दिया, कहीं में हरे कृष्णा पहले दिया. दोनों ही चीजें, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोई भी चूज कर लो. मगर उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे हरे राम पहले बोलो चाहे हरे कृष्णा पहले बोलो.
हरे राम में भी शुद्धिकरण ज्यादा होनी चाहिए.
है
हरे कृष्ण महामंत्र में तो आप जैसी जिस अवस्था में वैसे बोल सकते हो, लेकिन हरे राम पहले बोलने से
ये जो है ना, एक्चुअली ये जो पॉइंट है ना कि उल्टा हो गया और पहले, ये कहीं शास्त्रों में है नहीं. ये पॉइंट है, मतलब ये चीज जो आप ये कह रहे हैं कि उल्टा हो गया और जो आप कह रहे हो शुद्धि, ऐसा बोला जाता है मगर शास्त्रों में कहीं नहीं है. ना भक्ति शांतन ने कहीं बोला है, ना भक्ति ठाकुर, ना प्रभुपाद जी ने, ना जीवा गोस्वामी ने, कहीं नहीं. ये बनाई हुई चीज है. तो महाप्रभु ने कभी उल्टा नहीं किया.
नहीं, उन्होंने कहा आपके चैतन्य महाप्रभु करके.
हाँ, ये गलत है, ये गलत है, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गलत है. हम नहीं मानते इसको कि चैतन्य आपने उल्टा कर दिया. क्यों करेंगे वो? शास्त्र में दोनों है, बस दैट्स ऑल. सो हमने हरे कृष्णा इसलिए पहले बोला है क्योंकि कृष्णा हमारे प्रधान वो है ना, इसलिए महाप्रभु ने कहा भी हमारे तो कृष्ण ही है, हम पहले कृष्णा बोल रहे हैं फिर हरे नाम बोल रहे हैं. सो मगर आप पहले हरे नाम बोलो, क्या फर्क पड़ता है? बोलने में तो उल्टा ही सीधा हो जाएगा. तो कंटिन्यूस बोलोगे तो चाहे मरा मरा बोलो चाहे राम राम बोलो.
नहीं, हमारे मठ में नहीं, वो कहते हैं ये गलत हुआ, राम पहले नहीं बोलना.
हाँ, मतलब वैसे तो देखो लोगों को बुलाते हैं, बट आइडियली प्रभुपाद से पूछा था, प्रभुपाद ने बोला कर लो. प्रभुपाद ने बोला बोलो, क्या फर्क पड़ रहा है? बोल तो रहा है, वरना वो बोलेगा ही नहीं. भैया तू हरे राम बोल रहा है, बोल ले भैया, बोले टीवी देखने से अच्छा है. आजकल तो ये सिचुएशन आ गई है ना ऐसी, वो कहेगा मैं बोल नहीं रहा, चल मैं टीवी देख. भैया टीवी देखने से अच्छा है हरे राम पहले बोल लो भैया, कुछ पैर पड़ते हैं बाबा भीग दे दे, बोल ले कुछ. अब ये तो हालत है, बोलने को रेडी नहीं है कोई नाम. तो इसलिए हमें बोल देते, प्रभुपाद ने बोल दे बोलो यार, कोई काम.
हरे कृष्ण बोले में राधा रानी की कृपा,
ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है. अगर कोई एविडेंस है तो बता दें, ऐसा है नहीं कहीं, बस इतना है और कुछ नहीं है. राधा की कृपा तो उसको मिलेगी जो काम वासना से मुक्त है, उसी को मिलती है बस, वरना नहीं मिलेगी, बस इतना है. ठीक है? नहीं ठीक है. ओके, और क्या पूछना है? व्हाट एनी अदर क्वेश्चन?
हम डिस्ट्रीब्यूशन के जाते हैं तो कई लोग पूछते हैं कि हम भगवत गीता तुम्हारे क्यों लें, कि मतलब हम तुम हमारी भगवत गीता लेके पहले करते हैं.
उनकी भगवत गीता कौन सी है? अलग अलग लोगों ने अलग अलग भगवद्गीता पे टिप्पणियां लिखी हैं. तो कुछ लोग कहते हैं हमारी भगवद्गीता ले लो, हम तुम्हारी भगवद्गीता क्यों ले. तो आप लोग क्या आंसर करते हो? हाँ नहीं, तो लोग कहते हैं ना कि हमारी भी भगवद्गीता है, आप हम आपकी क्यों ले, हमारे पास तो गीता प्रेस की है फॉर एग्जाम्पल. तो आप लोग क्या कहते हो? तो कहेंगे वो हमारी भी यथारूप है, हमें लिखा नहीं है मगर हमारी भी है. वो तो कहेगा ही ना,
तुमने कुछ भी लिख दिया हो तो हम कैसे मानें कि तुम्हारी सही है कि नहीं.
तो वो भी आपको बोल सकता है तुमने कुछ भी लिख दिया हो. कोई नाम प्रिंट करने थोड़े ना होता है कि यथारूप है तो यथारूप बन जाएगी, है नहीं? तुमने प्रिंट किया हुआ है ना, कोई थोड़े ना कि बन जाएगी, कहेंगे तुमने खुद ही प्रिंट कर दिया यथारूप है। एक्चुअली ये दिखा सकते हो, उस गीता को खोल के उसमें परंपरा दिखा सकते हो,
गुरु परंपरा।
हाँ, कि हमारी गीता परंपरा में आ रही है, कृष्ण ने नॉलेज दी, व्यासदेव, फिर नारद मुनि, मध्वाचार्य, फिर उसके अकॉर्डिंग इस गीता की एक्सप्लेनेशन है। बाकी गीता में परंपरा है ही नहीं, दिखा दो हमें कहाँ है, दिखा दो, कोई प्रिंटेड ही नहीं है वहां पे। सो इसलिए बोलो कि इसलिए तो उसकी जो आपकी गीता है इसलिए वो मनगढ़ंत है, क्योंकि हमारी तो परंपरा से आ रही है, गुरु टीचर के डिसाइपल एक शिष्य की लाइन से, तो सही है, तो वो इस पॉइंट पे मान लेते हैं, इसका कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है उनके पास। ठीक है ना, ठीक है, ये सबने अपने मन से लिख रखी है, मतलब पॉलिटिशियंस ने भी लिख रखी, गांधी ने भी लिखी हुई है गीता, पता है क्या नाम है उनकी गीता का, क्या किसी को पता है, विनियोग वैराग्य ऐसी कुछ नाम है, विनोबा भावे ने लिखी है, पॉलिटिशियंस ने, क्रिकेटर्स
ने भी लिखे, गवर्नर थे जो,
किसने,
शिवराज पाटिल गवर्नर,
हाँ हाँ हाँ, सबने गीता पे लिखा हुआ है। अब ये बात है कि अब हमें कैसे पता लगेगा हम वो पढ़े या ये वाली पढ़े, इस कौन की, तो बस यही बात है, उन्होंने उनके वहां पे कोई गुरु परंपरा नहीं है, उन्होंने अपने अपने आप लिख दी जो उनको अनुभव था, मगर हमारे ऐसा नहीं है, जो कृष्ण समझा रहे हैं, व्यासदेव, नारद मुनि, मध्वाचार्य, वो पूरी लाइन जो प्रिंटेड है हम बिल्कुल वैसे ही लिख रहे हैं, तो ठीक है, बिल्कुल, दैट्स ऑल, फिनिश, खत्म हो गया वही मैटर। एक और कह सकते हो रीजन कि बाकी जो गीता में जो टिप्पणियां होती है ना वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक तो पहले गीताओं में एक्सप्लेनेशन नहीं होती, तो ट्रांसलेशन होती है, एक्सप्लेनेशन नहीं होती, तात्पर्य नहीं होता, इस गीता में तात्पर्य भी है, प्लस साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया हुआ है लॉजिकली, बाकी गीताओं में साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होती नहीं, ऐसे ही लिखा होता है, कहानियां लिखी होती है, नहीं तो इसलिए बाकी गीता पढ़ के कोई चेंज भी नहीं होता, कोई यूथ यहाँ पे, तो यूथ्स भी चेंज हो रहे हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन है, नहीं? सो दैट्स अ गुड क्वेश्चन, या और कोई क्वेश्चन नहीं किसी के पास, बड़ी अजीब सी बात है, आप लोग क्वेश्चन लेस हो। हरे कृष्ण महामंत्री पर्याप्त है तो गायत्री मंत्र क्यों करें, गायत्री मंत्र क्यों करें, गायत्री मंत्र ही होता है, पता है ना, तो आपका क्वेश्चन कि हरे कृष्ण मंत्र पर्याप्त है तो गायत्री मंत्र
जब क्यों करना है,
तो करना ही क्यों है, मत करो, गायत्री मंत्र है, हरे कृष्ण मंत्र है, कई लोग गायत्री मंत्र करते हैं, हम लोग हरे कृष्ण करते हैं, उसके पीछे कारण यह है कि गायत्री मंत्र करने के लिए सबसे पहले दो चीजें चाहिए, एक तो स्त्री गायत्री मंत्र नहीं कर सकती, मना है, अगर आप दक्षिण भारत में जाओगे स्त्री करती नहीं गायत्री मंत्र, आप देख लो अभी भी चले जाओ, नॉर्थ में तो सब खिचड़ी पक चुकी है, नॉर्थ में तो क्या घंटी में भी गायत्री मंत्र होता है, चलाते ओम भूर्भुवः, यू कांट डू दैट, ये सब गलत है, ये सब ऐसे घंटियों में गायत्री थोड़ा लगा सकते हो, गायत्री मंत्र को बोलते हैं वेद माता, वैदिक मंत्र है ना, सो उसको वो क्योंकि वेदों का भाग है और विश्वामित्र उसके ऋषि हैं, गायत्री छंद है, तो उसको बोलने के लिए आपको एक प्रोसीजर होता है, एक वेद किसी भी वैदिक मंत्र को बोलने के लिए अंगान्यास करान्यास करना पड़ता है, उसके लिए आपको उद्दात अनुदात एक शिक्षा लेनी पड़ेगी वेदों की, कैसे बोलना है आपको, ऊपर नीचे कहाँ बोलना है,
होता है
मतलब शुद्धि होती है हाथ की, पांव की, शरीर की शुद्धि होती है मंत्रों से, वो करनी पड़ती है, तो अगर आप वो नहीं करोगे तो उसका उल्टा प्रभाव आ जाएगा आपके ऊपर।
हमारे यहाँ संस्कार में यही गायत्री मंत्र बोलते हैं।
हाँ। संस्कार क्या होता
है, किसी डेथ में संस्कार में क्या करते हैं,
कौन बोलता है,
वहाँ शमशान में
सारे बोलते हैं समाज,
परिवार,
सभी साथ में ही,
हाँ जी हाँ जी, वो जो संस्कार करवाते
हैं
ना,
चार बार बुलवाते हैं जोर से,
अब वो उसको खुद भी नहीं पता क्या कर रहा है, वो उसको खुद ही नहीं पता हुआ क्या कर रहा है, वो तो पैसे के लिए कर रहा है ना,
हमारे को बोला है कि हम नहीं बोलते,
हाँ
तो मन में कर सकते,
या वैसे बोल नहीं सकते आप, तो स्त्री तो बोल ही नहीं सकती,
स्त्री तो होती नहीं,
कौन करती है, वही तो कह रहा हूँ, नॉर्थ में होता है ये सब, नॉर्थ में सब गड़बड़ है, तो नॉर्थ ही तो है ये, स्त्री बोल नहीं सकती गायत्री, अलाउड ही नहीं है। स्त्री अगर बोलेगी उसको अपराध लगेगा सीधा। आप दक्षिण भारत में किसी भी वैदिक पंडित से पूछो, ऋग्वेद शाखे पंडित, सामवेद की शाखा का पंडित जो एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं, वो मना कर देंगे। स्त्री तो ओम भी नहीं बोल सकती, वो तो ओम की जगह अम बोलते हैं, ओम भी नहीं बोल सकते। तो वेदों में ऐसा लिखा है और वैदिक मंत्र है ये। नॉर्थ में तो सब अब चलता है ना, नॉर्थ में तो क्या है, मतलब आप शमशान घाट में बोल रहे हो, सभी बोल रहे हैं, स्कूल्स में भी ऐसे होती है प्रेयर। हाँ, सो एकदम गड़बड़ है सब। तो अगर हम वेदिक वेदों के अनुसार नहीं चलेंगे, धर्म के अनुसार नहीं चलेंगे, तो पाप लगेगा। तो वो तो बच्चे तो मम्मी को स्मार्टफोन भी चला के दिखाते, मम्मी खुश होती है, उसको उस खुश होने की वैल्यू क्या है उसकी, है नहीं। ये सब तो नॉनसेंस है नॉर्थ इंडिया में।
महामंत्र तो कर सकते
हैं, महामंत्र तो कहीं भी कर सकते हैं। तभी इसलिए महामंत्र करते हैं कि गायत्री मंत्र बोलने में कहीं योग्यताएं चाहिए, कहीं क्वालिफिकेशन चाहिए, शुद्ध होना चाहिए मन, अंगन्यास करन्यास करना पड़ेगा, या आपको बोल भी नहीं सकते, और फिर उसके बाद स्त्री भी नहीं बोल सकती, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है गायत्री में। तो इसलिए हरे कृष्ण मंत्र में कोई नियम नहीं है, क्योंकि वो नाम है ना भगवान का, नाम में क्या नियम होगा। नाम तो पहले जमाने में हम रोड पे चलते थे तो बोलते थे राम राम भैया, ऐसे ही बोलते थे ना, मुझे याद है बचपन में। अभी अभी कौन बोलते हैं, अभी तो राजपुरा में बोलते होंगे, बोलते हैं, मैंने तो नहीं देखा यहाँ पे बोलते हैं, आप लोगों तो कभी नहीं देखा हरे कृष्ण बोलते
हैं,
बुजुर्ग बोलते होंगे,
हाँ
हाँ, यूथ नहीं बोलते होंगे, यूथ
संडे
बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
राम राम,
कौन बोलते हैं,
अम्मा नहीं आती हो,
अच्छा हाँ वो बोलती है, हाँ बोलती है, हाँ बूढ़ी औरत, हाँ हाँ जो बोलती है, तो ठीक है अभी भी, मगर यूथ तो सब भूल ही गए, मतलब राम राम तो सो, क्योंकि राम राम और हरे कृष्णा हरे राम ये नाम ही है ना, इसमें कोई नियम ही नहीं है। तत्रार पिता नियमते स्मरणे न काला, इसलिए महाप्रभु ने कहा ये जप करो। और ये और गायत्री में कोई अंतर नहीं है। आप बोलोगे कि गायत्री में आधा शक्ति है इसमें कम है, नहीं, गायत्री का ही दूसरा रूप हरे कृष्णा मंत्र है, ये भी शास्त्रों में लिखा है। गायत्री वेद माही नहीं, या हरे कृष्ण मंत्र ने ही गायत्री का रूप लिया है, उल्टा कह लो, क्योंकि अकारे न उच्चते कृष्णा, उ कारे न राधा, म कारे न जीव। अ ओम में ए यू एम होता है ना, ओम ए यू एम, अ कहां से आ रहा है, कृष्ण से, उ आ रहा है राधा से, क्योंकि उ से ऊर्जा है, राधा कृष्ण की ऊर्जा है, शक्ति। अ कृष्ण है, कृष्ण गीता में कह रहे हैं सारे अक्षरों में मैं अ हूं, अ पहला अक्षर, पहला लेटर, और म मतलब जीव, और जो पचंद्र होता है ओम के, वो प्रेम है। तो शास्त्रों में पूरी डिस्क्रिप्शन है, तो इसलिए हरे कृष्ण मंत्र उसी का एक दूसरा रूप है, मगर बिना नियम के है, सो बेटर है कलयुग में कहा नियम फॉलो करते रहो। तो महाप्रभु ने कहा इसलिए हरे कृष्ण, चलते हुए सोते हुए जागते हुए हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ठीक है मैडम। स्त्रियों को नीचा क्यों दिखाया है स्त्रियों से पूछो भाई well, नीचा नहीं दिखाया, ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं बोल सकती। फीमेल्स अलग है, आई मीन टू से, अब मैं ऐसे कह दूं कि पुरुष नीचे हैं, पुरुष बच्चा नहीं कर सकते, तो आप लोग नीचे हो गए ना, तो फिर क्या है, स्त्रियां बच्चा कर सकती है, नहीं, वो ज्यादा हायर हो गए। सो नीचे ऊपर की बात नहीं है कि स्त्रियां ये नहीं कर सकती, पुरुष ये कर सकते हैं, नीचे ऊपर की बात नहीं है, बात है धर्म की। स्त्रियों का धर्म मंत्र जप करना नहीं है, स्त्रियों का धर्म है पतिव्रता, वो उससे शक्तिशाली बनती है, और पुरुषों का धर्म है मंत्रों का जप करना। सो ड्यूटीज की बात अलग है, बस और कुछ नहीं है। तो स्त्रियों, अगर आप इतिहास में देखो, कई स्त्रियां पावरफुल कैसे हुई, सिर्फ पतिव्रता से, सारी स्त्रियां उसकी वजह से उनमें शक्ति थी, सीता, अहिल्या, मंदोदरी, मतलब लिस्ट है सारी। और शास्त्रों में अगर उनसे पूछो कहां से शक्ति है, पतिव्रता से, सुलोचना, सो हरिश्चंद्र की वाइफ, तो सब शास्त्रों में तो कहीं नहीं आता कि उन्होंने मंत्र जपा है, वो मंत्र जपा है, नहीं। तो ड्यूटीज की बात है, तो इसलिए कहा जाता है कि स्त्री गायत्री मंत्र नहीं जप कर सकती, क्योंकि क्योंकि अगर वो उसमें पड़ जाएंगी तो अपना धर्म भूल जाएंगी, उनका एक ही धर्म है। गायत्री मंत्र की बात कर रहे हैं, वेदों को जप करने में टाइम ना लगाएं, वो पति की सेवा करें और उसकी। मगर 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 हरे कृष्णा मंत्र वो भक्ति है, उसको भक्ति से लेने देना है। गायत्री मंत्र को भक्ति से लेने देने नहीं, गायत्री मंत्र मोक्ष के लिए होता है, नहीं? सो वो कहती है भी मोक्ष तो आपको पति पति की सेवा से ही मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, मतलब प्रेम करने के लिए आपको भक्ति करनी पड़ेगी, वो अलग रास्ता है, उसके लिए फिर भगवान का नाम होता है हरे कृष्ण हरे कृष्ण। समझ गए नहीं समझ गए? तो क्योंकि गायत्री मंत्र वेदों का भाग है और वेदों को पढ़ने से पाप कट जाते हैं और मोक्ष मिलता है, तो शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री को पति की सेवा से मोक्ष मिल जाएगा, सारे पाप कट जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पतिव्रता इज अ डिफरेंट थिंग, मतलब माइंड में कोई और पुरुष नहीं है, सिर्फ एक ही है, दैट प्योरिटी। बट प्रेम के लिए तो भक्ति करनी पड़ेगी, उसके लिए भगवान का नाम।
जलंधर की घरवाली क्यों होता
है?
वृंदा देवी जलंधर मारे नहीं रहता।
सो हाँ, तो ऊपर नीचे की बात नहीं है उसमें, समझ गए नहीं समझ गए? नीचे ऊपर
है भी। आज के न्यूज़ पेपर में भी आया हुआ है कि स्त्रियों को किसी भी वेद शास्त्र में ऊंचा नीचा नहीं दिखाया गया आदमी से।
हाँ, ऊंचा नीचा है ही नहीं बात। अब ऊंचा नीचे की बात होगी तो फिर तो
एक मंदिर में कुछ रेस्ट्रिक्शन है लेडीज के लिए, उसके बारे में लिखा हुआ था।
हाँ तो बस
क्यों है?
क्यों है? क्यों है? उसमें क्या लिखा था? उसमें क्या लिखा था? क्यों है? पढ़ा ही नहीं आपने? लो, इतना अच्छा टॉपिक था, पढ़ना चाहिए था। से ऊंचे नीचे की बात नहीं होती, नहीं? जैसे बच्चे हैं तो बच्चों को अलाउड नहीं है वेद पढ़ना, वो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? उल्टा सीधा पढ़ देंगे, है नहीं? और उल्टा इफेक्ट आ जाएगा, तो इसलिए बच्चों को मना है। बच्चों की ड्यूटीज अलग है, सबका धर्म अलग अलग है ना। जो राजा है, अब तो राजा का धर्म अलग है नहीं? तो राजा का धर्म है सबका पालन करना, टैक्स लेना, वो करना। तो आप कहोगे यार अपने तो अपने राजा को ऊपर दिखा रहे हो, प्रजा को नीचे दिखा रहे हो, है नहीं? राजा प्रजा पे टैक्स ले रहा है, कुछ भी पनिशमेंट दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, ये तो बड़ी अजीब सी बात है भैया। अब उसकी ड्यूटी अलग है, वो राजा है, तो सबकी ड्यूटीज हैं अलग अलग, ठीक है? नहीं ठीक है, दैट्स हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग। वो गायत्री मंत्र वैसे नहीं जप करते हम लोग, वो गायत्री मंत्र वो वैदिक विधि में नहीं करते, वो सिर्फ डीटीज की वर्शिप के लिए। बस 24 घंटे थोड़े ना करते रहते हैं, 24 घंटे का करते हैं वो, तो बस तीन टाइम, वो भी 10 टाइम्स बोला जाता है बस। वो इसलिए बोलाते हैं क्योंकि अर्च वगैरह की पूजा करने के लिए एक योग्यता है, तो वो भी लिमिटेड में, ज्यादा नहीं बोल सकते उसको, तो इसलिए वो केस ही बिल्कुल अलग है।
उसमें
लेडीज को दिया जाता है, मगर एक्चुअली लेडीज को के लिए अलाउड ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने अलाउ किया था क्योंकि अमेरिका में लेडीज ने बोला था कि अगर आप हमें नहीं दोगे तो हम मूवमेंट छोड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा भैया मूवमेंट ही नहीं होगा, भक्ति नहीं लेंगे इस छोटे से पॉइंट के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मगर थ्रेड नहीं है, थ्रेड नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसे ही कर लो फिर, दैट्स ऑल। वो वहां पे बात कुछ और थी, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड, एब्सोल्युटली है ही नहीं। सो
व्यास आसन पे बैठ के
भागवतम कथा कर सकते हैं?
यहाँ इस सीट पे नहीं कर सकते,
लेडीज नहीं बैठ सकती व्यास आसन पे, गलत है, शास्त्रों में नहीं है। क्योंकि व्यास आसन में बैठ जाएगी वो तो उसको और पुरुष देखेंगे ना, वो ही मना है।
वो भी बाल खोल के बैठी
होती, बिल्कुल ही गलत है वो। तो जिस स्त्री के बाल खुले हुए हैं शास्त्रों में तो उसको उल्टा बोला जाता है, वो नारी है ही नहीं। नारी तो वो बना बाल बांधती है, वो बाल बांधने में शक्ति होती है एक्चुअली। शास्त्रों में ऋग्वेद में लिखा है चूड़ी पहनने में शक्ति है। जितनी भी हमारी ट्रेडिशन है ना, कल्चर, उसमें कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन है, ऐसे नहीं बना दिए गए। सो बाल खुले होंगे तो आपकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, इसलिए बाल बांध के रखती है वो पब्लिक में। और शक्ल तो दिखाती नहीं पहले की स्त्रियां, कहाँ दिखाती थी, नहीं घूंघट में रहती, नहीं रहती थी। अब तो चलो ट्रेंड चला गया है, मगर पहले घूंघट में रहती थी। या इवन इस्लाम में वो चुन्नी करके रखते थे, है नहीं, वहां पे यहाँ पे हमारे घूंघट होता था। बल्कि जो जो लो कास्ट के लोग होते थे, ऐसे जो नीचे जो काम करने वाली औरतें होती वो नहीं ढकती थी, मगर जो अच्छे कुल की औरतें होती थी वो हमेशा मुंह ढक के रखती थी। आप देख लो अच्छे घर के, अच्छे घराने की औरतें जो होती थी पहले, तो एटलीस्ट सर ढक के रखती थी। सो तो वो पब्लिक में सबके सामने बैठना वो तो बिल्कुल ही गलत है, सब सभी देख रहे हैं सब।
मैंने तो सुना कि पिक्चरों में पहले औरतों को अच्छा नहीं माना जाता।
हाँ, पिक्चरों में कहाँ माना जाता, वो तो है। क्या कह रहे हो?
जो बाल कटवा के बैठती हैं,
बाल कटवा के, बॉब कट, बॉब कट। स्त्रियां के बाल बड़े ही होने चाहिए, वो कटवाना वटवाना ये शोभा नहीं देता। मतलब मेल जैसा बनना चाहते हैं ना, वो सुंदर भी नहीं लगती आइडियली, वो नारी नहीं है, वो कुछ बीच की है, कुछ वो कुछ गड़बड़,
कुछ
कॉर्पोरेट वालों ने चेंज किया है ना।
जेंट्स
तो बिल्कुल अलग चीज है यार, वो तो लेडीज साध्वी, मगर नहीं वहां का वो काटते हैं, औरतों के नहीं, औरतें नहीं करती, वो तो मुनि करते बन जाते हैं। औरतों को तो अलाउड ही नहीं है साध्वी ऐसे वहां पे ऐसे रहना। ये आप जा रहे हैं ना, औरतें करती हैं, वो भी करती हैं। तो फिर नहीं, तो फिर तो जैनिज्म में भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट है, दिगंबर श्वेतांबर, कुछ में करती होंगे कुछ में शायद नहीं करती होंगे, मुझे नहीं पता, मुझे नॉलेज नहीं है इसकी ज्यादा। सभी में करते हैं नहीं, स्त्रियां भी ठीक है फिर करती होंगी, बट दैट्स अ डिफरेंट सेक्ट ऑल टुगेदर। वो तो वेदों को फॉलो ही नहीं करते ना, तो अलग ही हो गया ना, हम तो वेदों की शास्त्रों की बात कर रहे हैं। सो स्त्रियां बॉब कट, इट्स नॉट अ गुड आइडिया, सब गलत है सब। स्त्रियां सुंदर ही बालों से लगती हैं, है नहीं, उसके बाल ही नहीं है वो क्या है, एक्चुअली अमेरिका में मैं गया था, तो अमेरिका में अभी फैशन चला है साड़ी और जूड़ी रखने का। वो कह रहे हैं यार हम सुंदर ही नहीं लग रहे, जीन्स वीन्स पहन के इतनी मोटी मोटी नजर आती है, मतलब क्या है ये, कोई फिगर ही, मतलब फनी, मतलब एबनॉर्मल शेप नजर आती है उनकी। तो वो उनको पता लग गया कि इसमें कोई ब्यूटी नहीं है, तो बिल्कुल ही नॉनसेंस चल रहा है। तो इसलिए वहां पे बहुत अप्रिशिएट करते हैं इंडियंस को, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, कहते हैं दिस इज फीमेल एंड दे लाइक वेरी मच, जो साड़ी और जूड़ा करके आती हैं। तो वहाँ पे एक मैं गया था, डेट्रॉइट सिनसिनेटी में था, तो वहाँ पे मतलब तो मेरे ब्रदर की मैरिज थी, तो एक मंदिर में, तो मुझे भी लेक्चर के लिए बुलाया था, तो मैंने वहाँ पे लेक्चर दिया। तो वहाँ पे सारे हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो तो सारे साड़ी वाड़ी पहन के आएंगे शादी में, तो फॉरनर्स भी थे, तो सब पूछ रहे थे, वो नाइस फोटो खिंचवा रहे थे, प्लीज स्टैंड यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल, हम खींचेंगे साड़ी में, और दे आर वेरी, यहाँ के लोगों का भूत वहां चढ़ा हुआ है।
बहुत ब्राइट और चकदे
इंडिया
उसमें खिलाड़ी थे सभी साड़ी पहन के गए थे।
अच्छा मुझे नहीं पता, अच्छा चकदे इंडिया बड़ा अजीब सा नाम है, इसका मतलब क्या चकदे इंडिया का?
नहीं,
इसका मतलब क्या था चक देगा? अच्छा उठा दो, अच्छा चक दे, अच्छा कीप अप इंडिया, अच्छा ये चक दे इंडिया,
हमारे जितने भी खिलाड़ी थे सभी साड़ी पहन के गए थे,
चलो देखो कितना अच्छा
उन्होंने दिखाया अपना कल्चर वहां।
हां तो फिर हमें अपना कल्चर दूसरों को देना है, उनका लेना है, हमें तो अपना है,
पहले दिन दिखाने के लिए मेहनत थे बाकी
सब, चलो एटलीस्ट दिखाया तो सही उन्होंने, ये भैया ऐसा है, एटलीस्ट सम पर्सन हैज अ ब्रेन, यू नो।
फॉर्मल्स पे पहनते हैं, बाकी इनफॉर्मल्स पे सब,
वो तो है ही। या
यही कहते हैं शास्त्र, अगर हम कहते हैं शास्त्र अपौरुष है, यदि पुरुष नहीं लिखे, कई लोग नहीं मानते इस बात को, जो शास्त्र को ही नहीं मानते फिर उनको कैसे कन्विंस करें?
जो लोग शास्त्र को ही नहीं मानते कि भाई शास्त्र किसी आदमी ने लिखे हैं, ये कहते हैं ना
तो किसी
भगवान से नहीं आए हैं, ठीक है तो हम नहीं मान रहे उसको, ये कहते हैं ना लोग, तो इसका आंसर आप लोग क्या देते हो? आप कुछ तो बोलते होगे अगर आपको
कोई भगवान का ही अवतार है,
हम कहते हैं हम नहीं मान रहे,
कार्ड दे
जाओ, फिर हम नहीं मानते।
बहुत सारे लोग कहते हैं ये तुम्हारे हिंदी पंजाबी में लिखे हैं, कोई पुरानी लिपि में तो लिखे नहीं है ये।
हाँ तो फिर
ऐसे
क्या आंसर क्या दोगे आप, हमें कैसे पता कि ये भगवान से ही आ रहे हैं डायरेक्ट? हो सकता है किसी आदमी ने लिखे हों, पता नहीं हजारों साल पहले, हमें क्या पता।
नहीं जो बातें लिखी हुई हैं वो हमारे को सही लगती हैं।
हैं एक्चुअली एक आंसर जरूर है कि अगर कोई बोले ना कि वेद शास्त्र आदमी ने लिखे हैं, तो आप उससे पूछो तुमने पढ़े, पहला क्वेश्चन तुमने पढ़े या नहीं, अगर नहीं पढ़े तो शट अप। बिना पढ़े कैसे कमेंट कर सकते हो किसी चीज पे? अगर तुम मगर अगर तुमने पढ़ लिया तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ये कोई मानवीय रचना हो ही नहीं सकती, वो इतना कॉम्प्लेक्स है वेद, इतनी ज्यादा नॉलेज है वेदों में कि वो ह्यूमन लिख ही नहीं सकता है। अभी भी साइंटिस्ट वेदों को पढ़ रहे हैं साइंस को एडवांस करने के लिए, उनको समझ नहीं आ रहा इतना हाई है। सो इसलिए तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन पूछने वाले पढ़ तो लो तुम, ऐसे कुछ भी बोलते रहो है नहीं। तो आप बोलो तुम्हारे शास्त्र भगवान ने नहीं लिखे, किसी मानव ने लिखे, तो मैं भी बोल सकता हूँ तुम्हारी पत्नी नहीं है, उसकी वाइफ खड़ी होगी बोलना मुझे कैसे पता तेरी पत्नी है। क्यों करोगे इसका, तो कहेगा कि तुझे मेरी लाइफ के बारे में क्या पता, तो ऐसे ही तूने वेद कहाँ पढ़े, कैसे बोल सकते हो यार। तो यू शुड से लाइक दैट, दैट्स ऑल, मुझे कैसे पता इसका रिलेशनशिप किसी और से तो नहीं है तेरी पत्नी का। फालतू की बातें बोल रहे नहीं लोग, बिना पढ़े कुछ भी है वही इधर उधर कुछ भी बोलते रहना। सो यू हैव टू से लाइक दैट अदरवाइज बट यू कैन आस्क हिम क्वेश्चन, दिस फर्स्ट क्वेश्चन, क्या तुमने वेद पढ़े हैं, जस्ट आस्क दिस, वहीं पे खत्म हो जाएगा। नहीं पढ़े, बिना पढ़े नहीं बोल सकते तुम, दैट्स ऑल फिनिश। क्योंकि मैंने पढ़े, मुझे तो मतलब मैंने खुद पढ़ के देखा, मतलब इम्पॉसिबल है, कोई ह्यूमन लिख ही नहीं सकता, वो मानवीय रचना इतना कॉम्प्लेक्स है, आप एक मंत्र भी नहीं लिख सकते मानव। ये तो सारे साइंस जो स्कॉलर्स भी कह रहे हैं कि उसकी संस्कृति मानवीय रचना नहीं है, जो हो ही नहीं सकता वो।
बेसिक गीता इतनी नॉलेज है, बाकी वेद तो क्या चीज है,
क्या कह रहे हैं, ठीक है नहीं बोल रहे, क्या कह रहे
हैं? वो चाहे नहीं मानता, लेकिन जो रूल अप्लाई होते हैं वो तो होंगे उसकी लाइफ के ऊपर भी होंगे।
हाँ वो तो ठीक है, मगर तो उससे क्या कहना है फिर,
वो माने ना माने, लेकिन जो पुण्य पाप या और भी कुछ लगे वो तो उसको,
हाँ नियम तो अप्लाई होंगे ही,
नियम तो अप्लाई होंगे।
नहीं नहीं वो तो चलो, वो कह रहे हैं मैं तो इसको भी नहीं मानता ना, वो तो हम कह रहे हैं ना नियम अप्लाई होंगे, कह रहे हैं गप है सब, तो उसको तो पहले विश्वास दिलाना कि गप नहीं है, कि भगवान से आया है।
अगला जन्म किसने देखा है,
वो भी कहते हैं अगला जन्म किसने देखा है, इसका क्या आंसर दोगे, अगला जन्म किसने देखा है, लोग कहते हैं इसका क्या आंसर दोगे आप, वो कहते हैं अगला जन्म किसने देखा है, तो आप क्या बोलते हो? यार ऐसे आंसर से मुझे कन्विंस नहीं कर सकते आप, दादी को कर सकते हो।
हम बोलते हैं बिल्ली बिल्ली आंखें बंद करके बैठ जाए तो, कबूतर आंखें बंद कर जाए तो बिल्ली खा ही जाएगी उसको, मैं कहा लाके पकड़ लूंगा।
नहीं ये आंसर क्या है,
एग्जांपल तो ही देते हैं।
नहीं आंसर सही बताओ लॉजिकल, अगर कोई कहे भी अगला जन्म किसने देखा तो क्या बोलोगे?
नहीं जैसे शिशु से यौवन फिर बुढ़ापा ऐसे करके जब आत्मा जरा शरीर छोड़ेगी तो दूसरे जन्म में।
हाँ, एक एग्जांपल भगवान दे रहे हैं ये कि शरीर में भी शरीर बदलता है मगर आत्मा वही रहती, नहीं बचपन का शरीर अलग है, हम बात तो करते हैं सेल्फ अवेयरनेस वो सेम रहेगी, छोटा बच्चा बड़ा शरीर बुढ़ापा शरीर बदल रहा है, आत्मा वही है, शरीर खत्म हो जाएगा तो भी आत्मा रहेगी, फिर दूसरा शरीर ले लेगी, खराबी क्या है इसमें, समझने में एक आंसर ही दे सकते जो भगवान दे रहे हैं, वेरी कन्विंसिंग। तो साइंटिस्ट अब आ रहे हैं इतनी रिसर्च के बाद इस क्वेश्चन पे, और दूसरा आंसर भी दे सकते हो आप, एक दूसरा आंसर दे सकते हो कि कई ऐसे केसेस आए, तो कई केसेस पुनर्जन्म के आते नहीं है टीवी में, कई आते हैं, अब आपको सब झूठ है, आप वो कहते हैं ना ये सब झूठ है, तो भैया सब झूठ है तो तुमने जिसके पुनर्जन्म हुए एक भी बंदे जाके बात किए, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं इस फील्ड में, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में रिसर्च हो रही है, मैं किताब ही लिख रहा हूं इस पे एक, और सही में पुनर्जन्म के केसेस है, मतलब ऐसे ऐसे केसेस हैं कि दो साल का बच्चा मथुरा में पैदा हुआ और मथुरा का दो साल का बच्चा स्विस लैंग्वेज बोल रहा है, स्विट्जरलैंड की लैंग्वेज बोल रहा है, जो हिंदी भी नहीं बोलनी आती उसको परफेक्ट। अब क्या कहोगे, कैसे कहोगे? फिर उसने बोला, फिर उसको उसको पूछा गया, फिर उसने बोला भी तो मेरा जन्म स्विट्जरलैंड में वहां हुआ था, ऐसे मेरे मम्मी पापा थे, ऐसा था तो मैं ऐसे मरा था, मुझे गोली मारी गई थी किसी ने, तो उसके निशान भी गोली का यहां पर, उन्होंने यहां पर लगी है, तो फिर उसके मम्मी पापा से बात कराई उसकी वहां पर, तो वो स्विट्जरलैंड में बोल रहे हैं, भी स्विट्जरलैंड में बोल रहा है छोटा बच्चा, तो उसकी मम्मी पापा ने कहा कि ये तो ये हमारा ही बच्चा है, क्योंकि ये वही शब्द बोल रहा है जो मेरे बच्चा पहचान जाते हैं ना मम्मी पापा अपने बच्चों की लैंग्वेज, उन्होंने कहा ये तो वही है। तो अब ये केस है एक, ठीक है, एक केस है, अब ये झूठा कैसे हो सकता है मुझे बताओ, इसमें झूठ क्या है, कैसे हो सकता है, वो बोलेगा ही कैसे स्विट्जरलैंड लैंग्वेज, सारे सारे थोड़े ना झूठ हो जाएंगे सारे, ऐसे कई स्टडीज की 2000 केसेस रिकॉर्डेड है
साइंटिफिक,
लोग मानते नहीं ना। अब मुझे बताओ अगर ऐसा केसेस हैं तो और एविडेंस की जरूरत ही क्या है, ये तो प्रूव ही हो गया ना, इससे बड़ा प्रूफ क्या, आप शास्त्र नहीं भी मानो तब भी पुनर्जन्म आपका तो सामने ही हो रहा है, सामने दिखाई दे रहा है। ऐसा एक केस था श्रीलंका में, एक बच्चा श्रीलंका में था, तो वो छोटा बच्चा पैदा हुआ, तो उसने उस पहले अपनी श्रीलंका लैंग्वेज नहीं होती, श्रीलंकन लैंग्वेज वो बोलता था, तो 4 साल की 6 साल की उम्र हुआ तो वो इंग्लिश बोलने लगा, उसको याद आने लगा कि मैं और छोटा था आई थिंक 3 साल का, कि मैं इंग्लैंड में ऐसे था, मेरे पेरेंट्स ऐसे थे, तो उसके पापा ने कहा ये इंग्लिश कैसे बोल रहा है इतनी फ्लुएंट, तो पता करा कहाँ थे, फिर वहां से फोन कराया, तो वो इंग्लिश में वो बोल रहा था कि ही टोल्ड मी लाइक दैट, तो इंडियन क्या कहते हैं, इंडियन इंग्लिश होता है ही सेड, तो फॉरनर्स होते हैं ही टोल्ड, समझ रहे हो, वो थोड़े डिफरेंस होते हैं, तो वो बिल्कुल ब्रिटिश इंग्लिश में बोल रहा था, तो सब ऐसे यार इसको क्या हो गया, हमने तो कभी सिखाया नहीं इसको, ऐसा पुनर्जन्म था उसका, इसको कहते हैं पुनर्जन्म रीइनकार्नेशन। सो ऐसे कई केसेस है। तो एक साइंटिस्ट है कार्ल सेवम, उसने पूरी, वो साइंटिस्ट है, उसने रिसर्च किए, सारे केसेस बताए, उसने अपनी बुक के एंड में लिखा है कि भैया अगर इतना कुछ होने के बाद भी तुम नहीं मानने पुनर्जन्म हो तो भगवान भी कन्विंस नहीं कर सकते अगर आ जाए तो, उन्हें यहीं पे एंड की है, अगर ये एविडेंस नहीं है तो एविडेंस होता क्या है मुझे बता दो, तो ये क्लियर है, साफ हो गया यार, फिर भी लोग नहीं मानेंगे तो क्या करें।
भागवत भी तो कह रही है कृष्ण भक्त अगर कभी पतन हो जाता तो फिर धनाढ्य है,
चलो वो तो चलो कहेंगे कहानी है मगर लिखा हुआ है, मगर मैं शास्त्रों को छोड़ के बात कर रहा हूँ कि यार वो दिखाई दे रहा है तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है अगला जन्म लेंगे, कोई क्वेश्चन ही नहीं है, करोड़ों लोग आ गए, अब यूट्यूब पे डालो रीइनकार्नेशन केसेस, एक मैं डाला था मैंने हॉवर्ड का, क्रिश्चियन था वो मर गया, फिर उसके बाद तो कई लोग मर के वापस भी आ गए, ऐसा भी होता है, देखा है नहीं देखा है, अच्छा मर जाते हैं फिर ऊपर जाते हैं फिर वापस आते हैं फिर बताते हैं मेरा ऐसा ऐसा हुआ है, तो क्या है मतलब क्या क्या हो रहा है फिर उन लोगों के साथ, मतलब क्या है, मतलब साइंस क्या कहती है उसके बारे में, सब गप है, वो गप कैसे हो सकता है सब, मरने के बाद अगर आप कुछ हो ही नहीं, कुछ हो ही नहीं तो मरने का तो खत्म हो गए, वो मर गया सब क्लियर हो गया, ऐसे लोगों को हॉस्पिटल में जो कोल्ड स्टोरेज नहीं होता और टॉप्सी के लिए वहां पर गिर दे, 3 दिन पड़ा रहा वहां ठंडे में मरा हुआ डायग्नोसिस, और 3 दिन में वापस आ गया, आंख खोल दी उसने, जब उसको काटने की बारी आई ना जब ऑटोप्सी, तो उसने आंख खोल दी, वो तो भागा होगा जो ऑपरेशन कर रहा होगा, उसने आंख ही खोल दी, 3 दिन तक पड़ा हुआ है फ्रीजर में मरा हुआ, तो फिर उसने बताया मेरा ऐसा हुआ, मैं ऊपर गया मैंने ये देखा, ऐसे देखा ऐसे देखा, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, सो क्लियर है हम शरीर नहीं है, ये तो आपको रिफ्यूट ही नहीं कर सकता, हमें इतने बड़े सेमिनार की भी जरूरत नहीं है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, सीधा रीइनकार्नेशन केसेस बताओ, सीधा बताओ जो लोग वापस आए हैं, और इसमें आप साइंटिस्ट ने केसेस स्टडी किए हैं, कोई हमारे जैसे लोगों ने नहीं, केस कंट्रोल स्टडीज थे सारे के सारे, जो कि जहां पे भी क्या कहते हैं फ्लॉज हो सकते थे उस सबको हटा दिया, हो गया सिंपल, ठीक है नहीं ठीक है, और जिस भी को भी ऐसा हुआ है, जिसको भी पिछले जन्म का याद आया कि जो भी मर के वापस आया है, 99% केसेस लोग आस्तिक बन गए, नास्तिक से भी आस्तिक बन गए सब। सबने वाला भैया हम तो आस्तिक बन गए, हमें पता लग गया है कि यही सब कुछ नहीं है। तो अगर ये सारी चीजें गप थी, सिर्फ मन की कहानियां हैं, तो फिर वो आस्तिक थोड़े ना बनते हैं, कोई इमेजिनेशन से, कोई सपने से कोई आस्तिक थोड़े ना बनता है। सो ऐसी भी चीज है, ठीक है नहीं ठीक है। सो ये कह सकते हैं हम लोग, अब बताओ जाके देख लो भी, अब तो यूट्यूब है, जाके खुद ही टाइप करके देख लो गूगल पे, अब आप टाइप करके देखना रीइंकार्नेशन केसेस, बहुत आ जाएंगे। और जो लोग कह रहे हैं आप कह ही नहीं सकते वो झूठ बोल रहे हैं, क्या सब लोग झूठ बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं हमें पुराने जन्म याद आया, क्यों बताएगा ही क्यों ऐसा गप मारने के लिए। तो मैनी थिंग्स आर गोइंग ऑन, ठीक है नहीं ठीक है। क्या कह रहे हो, क्या बनाई थी? हाँ हाँ, एक 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 जापान की वो है लड़की, उसने उसने नर की फोटोज बनाई है। तो उसने बोला कि क्राइस्ट में बेहोश हो गई तो क्राइस्ट मुझे नर्क ले गए गई, और उन्होंने मुझे बोला कि तुम नर्क की पिक्चर बनाओ, दिखाओ कि यहाँ पे क्या होता है। तो उसने सारे नर्क की फोटो बना के उसने जापान में एग्जीबिशन लगाया, और अगर वो फोटोज देखोगे ना तो एग्जैक्ट जो भागवत में लिखा है वही डिस्क्रिप्शन है एग्जैक्ट। किसने देखा है नर्क? अब उसने देखा, उसने पिक्चर बना दी, तो उसको तो पता भी नहीं था नर्क होता है ऐसी कुछ चीज, छोटी बच्ची है ना, पेंटर थी, तो उसको पता भी नहीं नर्क है, उसको ये भी नहीं पता कितने टाइप के नर्क हैं। उसने एग्जैक्ट भागवत की डिस्क्रिप्शन बना दी बिना पढ़े, मैं तो देख के आई हूं। तो नर्क में फोटोज देखो आप, बड़ी अजीब अजीब, उसके अंदर बहुत अजीब अजीब यातना है, जो झूठ बोलता है उसकी जीभ को पकड़ के उसमें कील ठोक देते हैं इसके अंदर। चलो भैया झूठ बोल रहे हो ना, जो शराब पिएगा तो उसको गरम गरम लोहा पिलाएंगे, मुंह खोल के यहां से पकड़ के खींच लेंगे, लोहे से ऊपर खींच लेंगे, नीचे खींच लेंगे, मुंह खोल के उसमें डाल लेंगे। उसने भागवत में लिखा है ऐसे,
पहले कैलेंडर आता था, मैंने बचपन में खुद देखा
है। सो क्या है मतलब, है चीजें हैं, नर्क है, कोई और प्लैनेट हो सकता है जहां पे पिटोगे? नहीं हो सकता। हो सकता है टॉर्चर, दैट्स अ प्लेस फॉर टॉर्चर। सो ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो फेथ लाने के लिए कोई कमी नहीं है, एटलीस्ट आजकल मॉडर्न जमाने में। अगर आप चाहते हो श्रद्धा लानी है ऐसी चीजें हैं तो गूगल पे जाओ, बैठ के अभी आ जाएगी। अगर देखना चाहते हो, लोग देख, एक्चुअली लोग बात ही नहीं करना चाहते इन चीजों पे, प्रॉब्लम ये है इन चीजों पे बात नहीं हो रही, कोई बता नहीं रहा ना कि ऐसी चीजें होती हैं, इसलिए पेपर में आता है खो जाता है, आप पढ़ते हो चले गए और चीजों में उलझ गए हम लोग। हाँ भाई ये चल रहा है, वो चल रहा है, टीवी वी ये चीजें, तो एक कॉलम पेपर में कॉलम में आती है छोटे से, नहीं हेडलाइन आनी चाहिए भैया, ये तो उसको पिछले दिनों को याद आ गया, हेडलाइन बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए मगर हेडलाइन क्या, एक छोटे से कॉलम में आ जाएगी, क्योंकि ये एजेंडा है, ये पॉलिटिकल एजेंडा है, गवर्नमेंट का एजेंडा है कि पता ही ना लगे किसी को कि अगला जन्म होता है, क्योंकि अगर पता लगे अगला जन्म है तो सब भक्ति करने लगेंगे, भक्ति करने लगेंगे तो उनका टीवी कौन खरीदेगा, एप्पल फोन कौन खरीदेगा, सारी शॉपिंग बंद कर दोगे, आपका इंटरेस्ट ही कम हो जाएगा उसमें, आपका हो गया यार बेकार की चीजें, मैं यहाँ पे अपने आप को जानूं उसमें टाइम लगाऊं मैं, आधा अच्छा है। तो इसलिए ये पूरा पूरा पॉलिटिकल एजेंडा है कि लोगों को मत पता मत लगने दो, जो जो क्या कहते हैं कंज्यूमरिज्म, वो कम हो जाएगा। सो लॉस होगा, फिर कंपनीज को लॉस होगा, कंपनीज वाले हैं ना, इसलिए वो चीज पता नहीं लगने देते, छुपा के रखते हैं सब।
शराब पीने वाले जनरली लॉजिक देते हैं कि दो पैग लगा रहे हैं, हमने किसी की जीव हत्या नहीं की, उसमें खराबी क्या है?
खराबी क्या है पैग लगाने में?
पाप कर्म नहीं किया उसमें, वो एक ऐसे मेडिसिन ले रहे हैं, उसमें क्या पाप, क्या क्या पाप क्या होगा
शराब पीने में?
देवता भी लेते थे सोमरस को,
या आपने देवताओं को देखा है? हाथ हो गई यार, आप तो ऐसे कह रहे हो देख के आए हो। देवता भी लेते थे और सोमरस पीते थे। वो तो भी हमने तो मतलब वो तो टीवी पता है ना, टीवी ये तो गप है या टीवी नॉनसेंस। वो सोमरस वेदों में दिया, वो शराब नहीं है, वो सोमरस के मंत्र हैं। सोमरस एक अलग, सोमरस को अमृत माना जाता है, शराब नहीं होती वो, शराब कहते हैं, शराब नहीं है वो, उससे शक्ति और वो बढ़ती है, हमेशा 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 यंग रहते हैं उसको पीने से। तो नहीं है वो, तो टीवी में दिखाया हुआ है, गलत है वो, इट्स अ हर्ब, हर्ब है वो, हर्ब, उससे ड्रिंक बनती है सोमरस। नहीं एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये क्वेश्चन क्या है और
शराब में दिक्कत क्या है?
विस्की लेते हैं, विस्की ले लेते हैं दो पैग, वो कहते हैं ऐसे मेडिसिन ले रहे हैं हम लोग, इसमें क्या खराबी क्या है?
मतलब किसी को मार नहीं रहे, चोरी नहीं कर रहे, बस थोड़ा सा पी रहे हैं।
हम क्या किया अपने, गलत काम तो किया नहीं,
वो कहते हैं अंगूर का रस है तो।
तो फिर आप क्या कहते हो?
आंसर है ये इसका,
नहीं किसी का आंसर नहीं है इसका,
नहीं ऐसा है ना, दो नशा
है,
नशा कोई
भी थोड़ी सी पिएगा तो होगा, एक चार पिएगा, डॉक्टर से बड़े बड़े पीते हैं, साइंटिस्ट पीते
हैं। तो क्या आंसर है, क्या आंसर दोगे आप उसका? कुछ तो आंसर होना चाहिए,
आर्मी वालों को दी जाती
है।
आइडिया ये है कि शराब आपके शरीर पे काम नहीं करती, मन पे भी काम करती है, अन्न का प्रभाव मन पे भी होता है। तो शराब पीने से मन तमोगुण में चला आता है, तमोगुण मतलब कि मन में भगवान को समझने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी।
इस पाथ में तो चल ही
नहीं रही, हम बता रहे हैं ना,
शास्त्रों को तो मान ही नहीं
रहे, शास्त्रीय बात ही नहीं, मैंने शास्त्र टर्म यूज किया,
इवन भक्ति भी नहीं करते।
नहीं मैं कह रहा हूं कि शराब पीने से आप में जो योग्यता है भगवान को समझने की, अपने आप को समझने की, वो कम हो जाएगी, क्योंकि मन डल हो जाएगा, तमोगुण में चला जाएगा। तमोगुण, आप वैसे इंटेलिजेंट रह सकते हो मैथमेटिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, मगर ये जो आप में जो योग्यता है अपने आप को जानने की, भगवान को जानने की, वो कम हो जाएगी, तमोगुण में चले जाओगे आप, तमोगुण। तो उससे क्या होगा, उससे आपने अपनी जो चांसेस है भगवान के पास जाने की खुद ही कम कर दी है, नहीं अपने आप को समझने की चांसेस कम कर दी। सबसे बड़ा पाप यही है कि किसी भी जीव आत्मा को भगवान के पास जाने से रोकना सबसे बड़ा ही पाप है। मारना काटना वो एक पाप होता है, सबसे बड़ा पाप है किसी को भगवान के पास जाने से रोकना, अपने आप को भी भगवान के पास जाने से रोकना वो भी पाप है। सो आपने अपनी चांसेस कम कर दी भगवान के पास जाने की शराब पीने से, क्योंकि आपका मन तमोगुण में चला गया। शरीर तंदुरुस्त हो सकता है, मन पे प्रभाव कर रहा है ना, सो इसलिए वो पाप माना जाता है। एक्चुअली हाँ, तो शराब पीना महापाप है, पाप नहीं है, महापाप है, महापाप में। समझ गए नहीं, समझ गए, समझ गए नहीं, समझ गए? तो ये बोल सकते हैं आप, हाँ बोल सकते हो। तो वो बोलेगा भी कि तो मुझे तो भगवान से और अपने आप से कोई मतलब ही नहीं है, मगर आप बोल सकते हो तुम्हें कोई मतलब नहीं है, मगर फिर भी तुम्हारे चांसेस तो कम हो गए ना भगवान के पास जाने की। जब भी तुम समझने की कोशिश करोगे तुम्हारे चांसेस कम है, क्योंकि तुम शराब पी रहे हो, इसलिए तुम्हें पाप लग रहा है।
भक्ति के रास्ते पे आएगा ही नहीं कभी,
हाँ, आएगा ही नहीं, तुम्हें इसके पाप लग रहा है, तुम अपने आप को रोक रहे हो भक्ति के रास्ते पे जाने से, तुम्हें इसको पाप लग रहा है इसको। That's all.
इनकार्नेशन की बात चल रही है।
वो अपने पे अहिंसा है, दूसरों को नहीं मार रहे, अपनी आत्मा को मार रहे हो, तुम अपनी आत्मा को मार रहे हो, दूसरों को नहीं मार रहे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कभी कि मैं कौन हूं, वही पाप माना जाता है। दूसरों को मारने से ज्यादा पाप है अपने आप को मारना, वो महापाप है। आत्मा, हा आत्मा को मारने वाला, आत्मा मतलब अपने आप की चांसेस खत्म कर देना समझने की, वो अपने आत्म अनुभव करने की। एक मिनट, क्या कह रहे थे, कौन कह रहा था? हाँ यही तो बात है, हम सबको सुनते हैं नरक है, और सब कुछ क्लियर भी है, हम अलग जन्म भी लेंगे, अब तो क्लियर भी हो गया साइंटिफिकली, रीइंकार्नेशन से देख भी लिया, सब कुछ कर लिया,
बाकियों को भी सब कुछ पता है कि ऐसे ऐसे नरक होते हैं, ऐसा भुगतना पड़ता है,
फिर भी नहीं करते हैं। नहीं तो प्रहलाद महाराज यही कह रहे हैं, पराता सतोबा, कि जिनका मन भोगों में घुसा होता है, हमें अभी आदत पड़ी है ना भोग करने की, जिसको आदत पड़ गई भोग करने की, वो दूसरों के समझाने से और अपने समझाने से समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो नशा चढ़ा हुआ है ना वहां का। एक शराबी को आप समझाओगे समझ आ जाएगा, मगर कर नहीं पाएगा, है नहीं? शराबी को बोलो अबे टेढ़ा मेढ़ा क्यों चल रहा है, मैं कहा हाँ मैं सीधा चलूंगा, वो टेढ़ा मेढ़ा चल के भी वो कर ही नहीं सकता, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भूत चढ़ा हुआ है दिमाग, जिसके दिमाग में भोग का भूत चढ़ा हुआ है, उसको समझा दो फिर भी टेढ़ा ही चलेगा, क्योंकि एडिक्शन है ना, एडिक्शन। तो इसलिए वो भूत उतारने के लिए भक्ति करनी पड़ती है, सिर्फ ज्ञान से काम नहीं चलेगा। शराब को नशा हटेगा तब वो सीधा चलेगा। सो जब ये नशा हटेगा ना भोग का, तब हम सही से करेंगे। तो ज्ञान से हमें इतना पता लग गया हम नशे में, इतना तो पता लग गया, सामने वाले को दे भी नहीं पता। ज्ञान से एटलीस्ट शराबी को यह पता लग गया टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, जिसको बताएगा भी नहीं उसको क्या पता, हो गया मैं मस्ती में हूं, जिसने बता दिया भैया टेढ़ा मेढ़ा चला नाली में गिर जाएगा फिर भी वो कुछ नहीं कर पाएगा, हाँ मैं सीधा चलूंगा उनको दिखाएगा, पता नहीं लगेगा उसको नाली में गिर जाएगा वो। सो ऐसे हम लोग हैं, ज्ञान से एटलीस्ट हमें ये पता लग गया कि हम नर्क जाएंगे अगर हम भक्ति नहीं करेंगे, हम शरीर नहीं है हम आत्मा है, साइंटिफिक रिसर्च से हमने कन्विंस कर लिया अपने आप को। मगर जब तक एडिक्शन नहीं छूटेगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, नाली में ही गिरेंगे हम। वो एडिक्शन हटाने के लिए नशा उतारना पड़ेगा, नशा उतारने के लिए हमें अच्छी चीज का नशा लेना पड़ेगा। भक्ति करेंगे तो वो नशा धीरे धीरे कम हो जाएगा, तब बात बनेगी। इसलिए सेवा करे बिना, नाम लिए बिना, सिर्फ पढ़ने से बात नहीं बनती, इसलिए हम क्लास भी करते हैं। तो ज्ञान से आप में इच्छा आएगी वो नशा उतारने की, है नहीं? शराबी कहेगा यार मेरे को नशा आ रहा है, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा हूं, मुझे हटाना है, मैं चल ही नहीं पा रहा, मुझे नशा हटाना है, वरना चल नहीं सकता सीधा, मेरे एक्सीडेंट हो जाएगा ड्राइव करने में। तो वो इच्छा आ जाएगी, मैं नशा उतारू 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 उतारू, मगर उतारने का तरीका है फिर नाम और सेवा, तो वो करने से हो जाएगा। इसलिए पूरा पैकेज है, नहीं क्लास भी करते हैं हम, कीर्तन भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, तब होता है। जो सिर्फ नॉलेज लेता रहता है, सेवा और नाम नहीं लेता, उसका नशा नहीं, वो नहीं कर पाएगा, कुछ भूलता रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, वो नाली में गिर जाएगा। बस ये जितना नशा है उतना नहीं कर पाओगे, जितना कम नशा है उतनी तेज कर, उतनी फास्ट हो जाएगा। ठीक है? नहीं ठीक है, दैट्स द आइडिया देयर, वी आर एडिक्टेड, एडिक्शन है हमें बहुत बड़ी। ओके सो लास्ट क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू स्टॉप
हियर। इनकार्नेशन की बात चल रही है तो नरक मतलब कौन भोगता है?
नरक कौन जाता है?
नहीं, नरक मींस हमारा सीट तो यहीं रह गया,
तो आत्मा जाएगी ना,
तो आत्मा तो नरक कैसे, उसको यात्रा कैसे
मिलेगी? आत्मा जाएगी तो नरक में जाके उसको दूसरा शरीर मिलेगा। तो नरक में एक शरीर होता है यातना शरीर, तो यातना शरीर मिलता है। तो शरीर में स्पेशलिटी होती है कि अगर शरीर को आधा काट दो ना तो दोबारा जुड़ जाएगा,
लेकिन दर्द होगा
काटने का। ऐसे आपको अभी काटे उतना दर्द होगा, फिर हम मरोगे नहीं, फिर जुड़ जाएगा, फिर पकड़ के काटेंगे आपको, फिर जुड़ जाएगा, फिर आपकी आंख में और रॉड घुसाएंगे, निकालेंगे आंख, फिर आंख आ जाएगी, फिर वो दर्द बार बार होगा आपको। बहुत डेंजरस शरीर है आपका, हाथ काट देंगे आपको दोबारा हाथ आ जाएगा, आपको हे हाथ आ गया मेरा, वाह,
लेकिन मैं
फिर पकड़ के काटेंगे। नर्क में अच्छा तो नहीं लगता, यूज टू हो जाओगे, जैसे पिट पिट के ना, फिर यू आदत पड़ जाएगी उसकी, हाँ पिट पिट के पिटने की हैबिट पड़ जाएगी आप नर्क में, तो फिर आप फिर जन्म लोगे यहाँ पर, फिर एक्चुअली फिर पिटने की आदत पड़ जाएगी ना, फिर आप किसी जानवर का जन्म लोगे, फिर जानवर क्यों नहीं, में तो पिटते ही है, तो फिर आपको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ट्रेनिंग है पिटने की। सो बट दर्द बहुत होता है वो, हरे कृष्ण। ओके फोन आ गया, क्लास बंद कर दो इसलिए क्लास एंड है। हरे कृष्ण, श्रीला प्रभुपाद की जय।